This is a podcast for Radio Sangam, the number one followed Asian community radio station in the UK.
So guys, as I said, we'll have Asma Nabil ji all the way from Pakistan. Wo hamare saath maujood hain. और आईपीपी अवार्ड्स में उनके साथ मुलाकात हुई थी लंदन में हमारी. उनके उस एक्सपीरियंस के हवाले से भी बातचीत करेंगे, खानी ड्रामे के हवाले से भी बातचीत करेंगे. खुदा मेरा भी है मान जाओ ना, बहुत से स्क्रीन राइटर हैं वो, बहुत से फिल्में हैं ऐसी जिनको उन्होंने प्रोड्यूस किया है ड्रामों में और फिल्मों के उन्होंने गाने भी लिखे हैं. उस हवाले से उनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम आसमा जी.
वालेकुम अस्सलाम तन्वीर, हाउ आर यू?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं. सबसे पहले आप बताइए, बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप?
Allah ka shukar, all good, and thank you so much for having me with you on the radio show.
थैंक यू जी. अच्छा, सबसे पहले आसमा जी ये बताइएगा, माशाल्लाह से इतना जबरदस्त आपने ड्रामा लिखा खानी, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा था. उस कहानी के पीछे क्या ऐसी आपके जहन में ख्याल था कि जिसकी बेस पे आपने वो इतना जबरदस्त किस्म का ड्रामा लिखा?
सबसे पहले तो थैंक यू इतनी ज्यादा तारीफ करने का. वाकई इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलाल से देखा जाने वाला पाकिस्तानी ड्रामा है.
बेशक बेशक.
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम हुआ है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से. लेकिन बस यही था कि लिखने से पहले जो भी मैं लिखती हूँ, चाहे वो खानी हो या और जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं या उससे पहले जो खुदा मेरा भी आया था, तो कोशिश ये होती है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात को लेके लिखूं, ताकि जो आम घरेलू चीजों के ऊपर जो ड्रामे बन रहे हैं, सिर्फ वही स्टोरीज ना लोगों को दिख रही हो, उसके अलावा भी कुछ सबक आमोज चीजें नजर आ रही हो. और दूसरा इरादा ये होता है लिखते हुए कि हम जब भी अपने यहाँ ड्रामों में या किसी भी चीज में हम कोई भी चीज गलत होती हुई दिखा रहे होते हैं, तो अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ पैरेलल में लेके चलना चाहिए. एंड पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर यू नो लॉ भी एग्जिस्ट करता है, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर कहीं कोई गलती हुई भी है और कोई अपने लिए स्टैंड ले तो उसको सजा भी मिलती है. सो इस किस्म के कुछ मैसेजेस हैं जो मैं अपनी राइटिंग के थ्रू देना चाह रही हूँ. और खानी में भी इसी किस्म का मैसेज था कि अपने राइट के लिए खुद जो इंसान खड़ा हुआ है, चाहे उसे कितनी भी हार्डशिप्स उठानी पड़ी, लेकिन वो खड़ा हुआ और उसको फिर इंसाफ मिला यहाँ पर.
अच्छा आसमा जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों पेमरा की जानिब से भी ये कहा गया था कि ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट, क्योंकि ये भी हम बोल्ड ही कहते हैं, क्योंकि आप जिसमें समाजी बुराई को दिखाते हैं, हम उसे यहाँ पे कम से कम बाहर रहते हुए उसे बोल्ड सब्जेक्ट ही कहते हैं. जैसे उडारी का एक सब्जेक्ट था, आपके ड्रामे में भी यही बताया गया कि एक सियासतदान को जो गरीब इंसान पे उसने जो जुल्म किया, उसके बाद उसके अंदर एक तब्दीली आई एंड ऑल दैट. लेकिन इस किस्म के जो पेमरा की तरफ से इस किस्म की बयान आते हैं, क्या आप समझती नहीं है कि वो हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उसको उसके टैलेंट को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाना चाहती है, या व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट?
इट इज नॉट अबाउट कैमरा इज नॉट, आई डोंट थिंक इतना ज्यादा कहीं पे गलत है, लेकिन कुछ जगहों पे दर्शी बातें सही आ जाती है. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंसेस, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो हम राइटर्स हो, चाहे हम प्रोडक्शन हाउसेस हो. आई थिंक इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंसेस बिटवीन व्हाट यू आर शोइंग. जैसे वो डायरी भी था, या अगर मैं खानी की भी बात करती हूँ, तो यू नो हमने अगर कोई ईविल दिखाया भी है, या अगर मुआशरे का बुराई दिखाई भी है, कौन सा ऐसा मुआशरा है तन्वीर जहाँ पे बुराई नहीं है?
बेशक.
लेकिन हर मुआशरे में एक बैलेंस जो है वो कंट्रोल हुआ हुआ होता है. आप बुराई दिखाते हैं क्योंकि देखें ना, ड्रामा या स्टोरी किसी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर तो बन ही नहीं सकता, और वो कॉन्फ्लिक्ट हम अपनी सोसाइटी से ही उठाते हैं. लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ अगर हम मुआशरे की अच्छाइयों को भी हाईलाइट करें, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है. और मैं खानी के लिए ये बात कह सकती हूँ कि अगर हमने एक बुराई को हाईलाइट किया जो कि अगर एग्जिस्ट करती है, तो उसके साथ हमने ये भी दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिसबिलीफ है ऑन द लॉ एंड सिस्टम ऑफ यू नो हमारी जो सारी चीजें हैं, लेकिन वो भी दिखाने की कोशिश की है, लॉ तो मौजूद है, तो जिसने स्टैंड लिया उसको उसने सजा दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली. तो ये बैलेंसेज अगर हम मेंटेन करके चलते हैं, और एज अ राइटर आई फील कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर मैं मुआशरे की बुराइयों को हाईलाइट कर रही हूँ, तो उसके साथ मुआशरे में मौजूद अच्छाइयों को और मुआशरे में मौजूद बहादुर लोगों को भी हाईलाइट करूँ.
सही. आसमा जी, हमारे पास एक सवाल आया, शमीम जी ब्रैडफर्ड से ये सवाल पूछ रही, कह रही कि खानी वाकईतन बहुत जबरदस्त ड्रामा था, क्या उसे आप नॉवल की शक्ल में कोई लिखने का इरादा रखती हैं, और अगर लिखने का इरादा रखती हैं, कब तक इस बुक के आने का ख्याल है?
नॉवल तो मैंने अभी नहीं इरादा किया है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बुक जरूर आने का इरादा हो रहा है, बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी वो प्रोसेस में है कुछ चीजें, लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड भी थी, रिक्वेस्ट भी थी, तो कुछ बुक जरूर आएगी, तो उनसे कहें बस थोड़ा सा इंतजार, और इंशाल्लाह अगले साल में बुक के उनको जरूर पता चलेगा, तो वो जरूर बुक मेरी खरीदे।
ये खानी के हवाले से आप कह रही हैं, खानी के हवाले से बुक आ
रही है? खानी के हवाले से नहीं, खानी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ नॉवल में नहीं लिख रही हूँ,
सही,
लेकिन एक और बुक है जो कि पोएट्री की बुक होगी,
ठीक है,
और वो इंशाल्लाह अगले साल लॉन्च करने का प्लान कर रही हूँ।
सही। हमारे पास यहाँ पे नदीम साहब का सवाल आया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपका माशाल्लाह से एक और आपकी फिल्म सॉरी देखी है, मान जाओ ना, वो कह रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन उसे उस तरह की पजीराई नहीं मिली, यूके में भी कह रहे हैं कि बहुत कम स्क्रीन्स में उसकी नुमाइश की गई, इसकी क्या वजह थी?
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पसंद करने का, मान जाओ ना जिसने भी देखी उसको बहुत पसंद आई। असल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नदीम साहब, बीच में हमने तो बहुत दिल से और ईमानदारी से फिल्म बनाई थी, लेकिन कभी कभी कुछ मसाइल रिलीज के टाइम पे कुछ आ जाते हैं इस किस्म के, स्क्रीन्स कम हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें प्लस माइनस हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल से कुछ वैसा हो गया। एंड आई थिंक उस वक्त एक दो जरा बहुत बहुत बड़ी कुछ फिल्म साथ आई हुई थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शोज हमारे ऑटोमेटिकली कुछ डिक्लाइन होना शुरू हो गए। सो होता है कभी कभी, लेकिन हमें ये बहुत खुशी है कि हमसे जो भी बात करता है वो मान जाओना की तारीफ करता है, जो कि हमारा दिल बहुत बड़ा करता है, और हम इसी हौसले और हिम्मत के साथ आप लोगों के लिए मजीद चीजें लाते रहेंगे।
सही। नवीद साहब ने ही अगला सवाल भी आपसे यही किया है कि कह रहे हैं कि आप किसी और फिल्म पे भी अभी काम कर रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से उस फिल्म की कहानी भी बहुत जबरदस्त थी, स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त था, तो आप इस किस्म की किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं फ्यूचर में, कोई आजकल में आपकी कोई नई फिल्म आने वाली?
इंशाल्लाह, बेसिकली प्रमोशन पिक्चर्स जिस कंपनी को मैं देख रही हूँ, फिल्म कंपनी जो मेरी है, वहाँ पे हम मुख्तलिफ फिल्मों पे काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं एज राइटर्स, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि अगले साल मैं खुद कर रही हूँ, खुद लिख रही हूँ, एंड उसकी अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाली है, एंड दैट प्रोजेक्ट इज रियली 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 क्लोज टू माई हार्ट, तो और आई होप एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा।
अच्छा आसमा जी, हमने जाहिर सी बात है जब हमने आपका इंटरव्यू किया था लंदन में, तो हमने उसका वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी शेयर किया था, लोगों ने ये आपका वो वीडियो भी देखा था, तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानी जो ड्रामा है और फिल्म है वो बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रही है, आप आइंदा उसे, आप भी उसमें शो में मौजूद थी, आइंदा पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा को कहां देख रही है? इमर्जिंग सिनेमा है फिल्म के हवाले से, लेकिन ड्रामा बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रांग इंडस्ट्री है हमारी, फ्यूचर में आप उसे कहां देख रही हैं?
ड्रामा इंडस्ट्री तो हमारी जहाँ पे है माशाल्लाह वो अपनी एक पीक पे है, और इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया ही हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो करी है, तो इससे क्लियर मकसद तो यही निकल के आता है कि मतलब टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, और चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, तो जब यही लोग आगे बढ़ के अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक गैप आया है, एंड वी ऑल नो कि वो गैप्स किन वजूहात की वजह से और क्या रीजंस थी, लेकिन अब जब एक दफा रिवाइवल शुरू हुआ है तो मेरा ख्याल से देयर इज नो स्टॉपिंग राइट नाउ, एंड मैं पाकिस्तानी सिनेमा का बहुत बहुत शानदार फ्यूचर देख रही हूँ, बिकॉज अभी शुरू के चंद सालों में ही हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और कमिंग ईयर्स में भी अब जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की है, और जिस तरह से और नए प्रोड्यूसर्स हिम्मत करके आगे आ रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि हर साल इजाफा ही होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्वालिटी के हिसाब से भी, तो कुछ चीजें हम लर्न करेंगे, कुछ चीजें हम सीखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम जैसे लोग नए नए आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रामे भी बना रहे हैं और सब चीजें, लेकिन आई थिंक ये लर्निंग कर्व इतना बड़ा नहीं होगा, एंड आई फोरसी अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री इंशाल्लाह।
अच्छा असमा जी, जैसे कि मैं जब थोड़ी सी तहकीक कर रहा था आपके हवाले से, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि आपका लिखा हुआ एक गाना इंडियन फिल्म में भी शामिल किया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडियन फिल्म में आपका एक गाने को जगह मिली है, बताइएगा, बहुत ही कम, क्योंकि हमारी उनकी इंडस्ट्री अपनी बहुत बड़ी है, बहुत से उनके पास अपने भी शायर हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो किसी पाकिस्तानी शायर या किसी ऐसे बंदे से रابطہ करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी फीलिंग होती है, तो बताइएगा वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा चंद लम्हे के हवाले से?
बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और आई थिंक बहुत इज्जत महसूस होती है, और अपनी जबान के लिए बहुत इज्जत महसूस होती है, बिकॉज मुझे लगता है उर्दू जो हमारी जबान है वो एक बहुत ही खूबसूरत जबान है, और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं हेलीकॉप्टर इला के प्रदीप सरकार, उनको इस जबान से ही बहुत ज्यादा लगाव हो गया था मेरी मुलाकात पे, और उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी जो मैंने लिखी थी, और उनको अच्छी लगी, और आई थिंक जो मैंने लिखा हुआ था वो भी, और आई थिंक हमारी जो जबान है वो भी, तो उन चीजों को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली कि हमारी जो उर्दू जबान है उसकी इतनी पजीराई हुई है और उसकी वजह से ये इज्जत मुझे वहां मिली है, तो बहुत खुशी की बात है।
आसमा जी, अगर आप खुद हमें ये चंद लम्हे सुनाना चाहें, अगर ताकि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं वो भी आपके अपनी अंदाजे बयां में वो आपकी जो नज्म है उसे सुन सकें, उस गाने को सुन सकें।
मैं थोड़ा सा आपको सुना देती
हूं। जी इरशाद।
चंद लम्हे बस खुशी के और फिर खाली सोना सा आंग, वही अंधियारी काली रातें, वही अंधियारे सोने से दिन, वही खामोशी हर पल चार सू, वही खामोशी हर सू हर पल, तू गया तो रुकी मेरी सांसें, मर भी जाए तो अब नहीं कोई गम।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा जी, हमारे पास एक और सवाल आ चुका है यहाँ पे, अनमोल का सवाल है, पाकिस्तान में इस वक्त हम आपको सुन रही हैं, वो गुजरांवाला में, वो कह रही हैं आपके कमर्शियल शायरी करने का भी कोई प्रोग्राम है, यानी कि अब कमर्शियल शायरी मेरा, मैंने जो इतना समझा है वो यही है कि कोई सॉन्ग्स वगैरह आप लिखना चाह रही हैं, तो ऑब्वियसली वो तो लिख ही रही हैं आप, लेकिन ये उन्होंने सवाल किया, आई डोंट नो व्हाट डज शी मीन बाय कमर्शियल शायरी।
कमर्शियल शायरी का मतलब शायद अनमोल का ये होगा कि कोई हिप हॉप टाइप का गाना या कोई डांस नंबर टाइप का गाना।
सही सही।
तो अनमोल अभी कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता, अगर किसी वक्त मूड बन गया और ऐसी कोई फनी या कोई ऐसी हिप हॉप थॉट आ गई, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मेरे दिमाग में कभी आएगी, लेकिन अगर आ गई तो फिर इसका मतलब है आपकी किस्मत थी कि वो बन गया आपके लिए।
क्या बात है, क्या बात है जी। मुबीन भाई भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, दुबई में सुन रहे हैं मुबीन भाई, उनका सवाल ये है कि आप कोई मजाहिया शायरी करने का इरादा रखती हैं, या कोई आपने मजाहिया शायरी आज तक लिखी है, या सियासी शायरी आप लिखना चाहती हैं या लिखी है आपने?
नहीं, मैं सियासत से बहुत दूर हूँ, मुझे समझ भी नहीं, और मजाक मुझे अच्छा लगता है, ह्यूमर पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा कलम जो है वो ह्यूमर कभी लिख सकता है।
सही। अब्दुल्ला भाई बांग्लादेश में हमें सुन रहे हैं, और वो भी आपका जो ये आप बातें हमारे साथ कर रही हैं उन्हें वो पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। बाबर खान हैलीफैक्स में, उनका सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि आप कोई मजाहिया ड्रामा लिखने का इरादा रखती हैं?
ये सब लोग मेरे से ह्यूमर के बारे में क्यों सवाल करें, क्या मैं बहुत सीरियस बातें लिखी हूँ तो लोग चाह रहे हैं कि मैं ह्यूमर लिखूं?
मेरा ख्याल
मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि मैं जिस तरह का मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मुझे लगता है शायद मैं ह्यूमर के साथ जस्टिस ना कर पाऊँ शायद, लेकिन वही बात है कि जब कलम है और कलम में ताकत दी हुई है लम्या ने, तो हो सकता है कभी इस किस्म की कोई चीज हो जाए, लेकिन प्लान नहीं है मेरा फिलहाल।
सही। आसमा जी, बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उन सवालों में हर बार हमारे कोई, जब कभी भी हम किसी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को, पाकिस्तानी राइटर को अपने प्रोग्राम में जहमत देते हैं, तो अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से जो इनके मसाइल होते हैं, इन्हें हाईलाइट करने के लिए कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई ऐसी चीज पाइपलाइन में है? तो हमारे पास रजिया जी का सवाल है, वो यही पूछ रही है कि ओवरसीज में, यहाँ पे यूके में कोई बहुत अरसा पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामे बने, फिर एकदम से अब ड्रामे बनने यूके में स्पेशली खत्म हो चुके हैं, कोई इस हवाले से ओवरसीज की कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से आप कोई ड्रामा प्रोड्यूस या राइट करना चाहेंगी?
बिल्कुल करना चाहूंगी, अगर कोई इस किस्म की स्टोरी मुझे मिलती है, क्योंकि मेरा जितना भी लिखने का है तो मेरे बहुत रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा रियलिटी के करीब चीजों को रख के लिखूं, तो उसमें मैं रिसर्च करी होती हूँ। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी से रिलेटेड, कोई उनके मसाइल से रिलेटेड, अगर कोई इतनी बड़ी कहानी मुझे रियल कोई इस तरह की मिलती है जिसको हम ड्रामेटाइज्ड वे में या फिर फिक्शनाइज्ड वे में मैं लेके जा सकूं, सो आई वुड लव टू डू दैट।
सही। रिजवान भाई हडर्सफील्ड से आपको सुन रहे हैं, रिजवान भाई हडर्सफील्ड से आपको सुन रहे हैं, और वो भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपका कब प्लान है यूके में आने का?
वालेकुम अस्सलाम, यूके में आने का हो सकता है बहुत जल्द हो जाए प्लान, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर।
सही। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया है, क्या है नंबर एंडिंग 014, वो सवाल ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह मेरी गुड़िया पाकिस्तान में इस वक्त ड्रामा चल रहा है, बहुत जबरदस्त किस्म की उसकी स्टोरी लाइन है, इस किस्म के बहुत से मसाइल हैं यूके में भी लोगों को, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस हवाले से मसाइल का सामना है, इस किस्म का कोई स्टोरी, अगर आप रिसर्च बेस के हवाले से भी आप बात करी थी, इस किस्म की किसी लाइन पे आप ड्रामा लिखना चाहेंगी? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बर्निंग इशू बन चुका है।
हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल लिखना चाहूंगी, और भी है कि अगर कोई मुझे इस तरह की स्टोरी मिल जाती है, कोई रियल स्टोरी मिल जाती है जिसको फिर मैं अपने पेपर पे थोड़े फिक्शनाइज्ड वे में ढाल सकूं, तो मैं बिल्कुल लिखना चाहूंगी। क्योंकि देखें, चाहे हम यहाँ पे हैं चाहे हम वहां पे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मसाइल कहाँ नहीं है, तो अगर कहीं पे भी हमारे अपनों को कोई फर्क पड़ रहा है उस चीज से या कोई फायदा हो रहा है, तो आई वुड लव टू डू दैट।
सही, रहमान साहब ने यह
और मैं
सवाल
कोशिश
किया है।
करूंगी, ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया है।
चलें, सही, थैंक यू। रहमान साहब ने यह सवाल किया कि आप समझती हैं बहसियत राइटर के किताबें पढ़ने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लोगों को पढ़ने का इतना शौक नहीं रहा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप खुद भी लिखा रही हैं, यह सवाल किया है रहमान साहब ने।
मेरे ख्याल से एक तो टेक्नोलॉजी का आपके हाथ में बहुत ज्यादा आ जाना एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बीच में हम इन अकदार को या इन चीजों को भूल गए हैं कि मतलब हम टेक्नोलॉजी में पढ़ भी सकते हैं, उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो एंटरटेनमेंट का इम्तिजाज मुझे ये लगता है कि हमारी जिंदगियों में ज्यादा आ गया है, और हम बस इन्हीं चीजों को देख के और सुन के हमें लगता है कि हम सब सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली किताबों में बहुत कुछ है जो कि पढ़ना भी चाहिए, और मेरा ख्याल से किताबों को पढ़ने को बहुत जरूरी है प्रमोट करना।
सही जनाब। हमारे पास एक और सवाल आया है, नंबर एंडिंग 452, वो कह रहे हैं कि आपका कोई मजमुआ अब तक छप चुका है आपकी शायरी का, और अगर छप चुका है तो बताइएगा ताकि वो खरीद लें, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप अपने फेवरेट पोइट का बताइए और आपकी अपनी फेवरेट शायरी किस किस्म की है, आपको किस किस्म की शायरी, रोमांटिक शायरी अच्छी लगती है या किसी मुआशरती बेस्ड जो स्टोरीज होती है इस तरह की शायरी आपको अच्छी लगती है?
मेरी फेवरेट पोइट है जिनको मैंने यहाँ से और काफी ज्यादा पढ़ा है, और आई थिंक मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कुछ उसी तरह की आजाद चीजें लिखी हूँ जिस तरह की उनकी लिखाई में एक अंसर नजर आता था। जहाँ तक ताल्लुक है किस तरह का लिखती हूँ, तो मेरा मुआशरती उन चीजों पर इतना नहीं है, लेकिन रोमांस और आई थिंक थोड़ा गम की तरफ ज्यादा चीजें जाती हैं, क्योंकि शायद सेंसिटिव ज्यादा हूँ तो इसलिए सेंसिटिव है मेरा पेन, चाहे वो ड्रामे लिखने की बात हो चाहे वो पोइट्री हो, तो हसासियत बहुत है उसके अंदर, रोमांस के साथ हसासियत है। किताब अभी नहीं आई है, लेकिन पोइट्री की किताब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगले साल अपने चाहने वालों को जरूर दूँ।
सही, नंबर एंडिंग 452 ही दोबारा से आपसे कह रहे हैं कि आपसे गुजारिश है कि जो आपके दिल के करीब कोई कलाम है वो अगर आप अता करना चाहें हमें।
एक्चुअली एकदम से सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, सो वो मैं सोच के आपको वॉइस नोट भेज दूंगी, आप अगले प्रोग्राम में चला दीजिए।
डेफिनेटली चला देंगे जी। सिद्रा जी का सवाल आया है यहाँ पे, सिद्रा जी ये सवाल कर रही हैं, कह रही हैं कि माशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त किस्म के ड्रामे लिख रही हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो खानी का ड्रामा है उसकी किताब जरूर लिखें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं वो किताब पढ़ना। तो ये अब सेकंड आपके पास गुजारिश आ चुकी है यहाँ से, रिक्वेस्ट।
खानी है कि किताब लिखने की बहुत लोगों की गुजारिश आई है, और मैं बड़ी अमेज भी हूँ कि जब पूरी कहानी देख ली है तो आप पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कहानी तो वही होगी,
सही।
तो दोबारा देख लें खानी, लेकिन चले मैं ये बिल्कुल इतने प्यार से सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कंसिडर जरूर करती हूँ, लेकिन एक बहुत हिम्मत का काम है किताब लिखना, क्योंकि पोइट्री की किताब देखें फर्क तरह से लिखी जाती है, और मुझे ये लगता है कि जो भी काम इंसान करे वो फिर ऐसे करे कि उस काम में बेईमानी ना हो जाए कहीं। सो किताब लिखना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और वो एक अलग तरह का आर्ट है, ड्रामे लिखने से फर्क आर्ट है, तो वो करने के लिए हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी, और आई थिंक इस तरह की फिर करूं कि आप लोगों की उम्मीदों पे पूरी करूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
सही। अच्छा जी, दाऊद साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग खानी ड्रामे के हवाले से सवाल किया, उन्होंने कहा कि बिन रोए, आपने जरूर देखा होगा कि उस पर ड्रामा भी बना और बाद में फिल्म भी, तो वो कह रहे हैं कि खानी पे आप कोई फिल्म बनाने का इरादा नहीं रखती, बहुत जबरदस्त, कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, उस पे फिल्म भी बननी चाहिए।
कंटेम्प्लेशन है इस पे, लेट्स सी।
चलें दाऊद साहब, आपको भी यकीनन जवाब मिल गया। अच्छा, नंबर एंडिंग 3481 कह रहे हैं कि आपका फेवरेट मुसन्निफ कौन सा है, आप किसकी किताबें आप खुद पढ़ती रही हैं?
मैं अगर अपने बारे में बात बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा किताबें मैंने नहीं पढ़ी हैं, पोएटिक एक्सप्रेशंस मैंने जरूर पढ़े हैं, मैंने गालिब को पढ़ा है, मैंने परवीन शाकिर को बहुत पढ़ा है, मैंने फैज अहमद फैज साहब को पढ़ा है, तो इस तरह मैं हमेशा किताबों में पोइट्री की साइड पे रही हूँ, नॉवेल्स या अफसाने वो वाली चीजें मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है।
ठीक, اچھا ایک سوال اور آیا, یہ بھی مہجبین صاحبہ کا سوال, وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار شاید آپ کی کوئی سٹوری پڑھی تھی اخبار میں, لیکن آپ نے کہا نا کہ آپ اخبار میں نہیں لکھا آپ نے, وہ کہہ رہی ہیں میں نے تین عورتیں تین کہانیوں میں آپ کی ایک سٹوری پڑھی تھی آسما نبیل, بٹ آئی تھنک دیٹ مسٹ بی سم ادر آسما نبیل. تو مہجبین جی آسما جی رائٹر ہیں, ڈراما رائٹر ہیں, فلم رائٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, تو آپ نے جن کی بھی اسٹوری پڑھی ہوگی وہ ڈفرینٹ ہیں. بہت شکریہ. امتیاز بھائی کا سوال آیا ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کوئی اچھا سا گانا جو ہے آپ ابھی میلو, وہ سوال ہو بھی چکا ہے ویسے بھی جو کمرشل کے لحاظ سے تھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گانے میں نے تین سنے ہیں میلو آ رہے ہیں, کوئی اپ بیٹ گانا کرنا چاہیں گی آپ؟
میں نے اس کا جواب دیا ہے اگر مجھے لگا, کیونکہ اگین میں وہی کہہ رہی ہوں میں جو بھی کرتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ایسا ہو کہ جو آپ سب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے, اور آپ یہ نہ کہہ رہے ہو کہ یس میں نے کیا کر دیا. تو اس لیے اگر کبھی لکھا اور مجھے 100% یقین ہوا کہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے گا تو پھر سامنے لاؤں گی, نہ نہیں لے.
اچھا
آپ لوگوں کا پیار اور یہ عزت میرے کام کی وجہ سے بنا ہوا ہے.
فرزانہ جی کا سوال آ گیا, فرزانہ جی کہہ رہی ہیں کہ کوئی, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں خانی کے بعد, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کے اگلے ڈرامے کے لیے, تو آپ کا اگلا ڈرامہ کب آ رہا ہے, اور اگر آ رہا ہے تو کس بیس پہ ہے, اسی طرح کی کسی سوشل ایشو پہ آ رہا ہے ڈرامہ آپ کا؟
میرا ابھی ایک ڈرامہ آن ایئر ہے ہم ٹی وی پہ, وہ آ رہا ہے باندی کے نام سے.
اچھا
اس کی تین قسطیں آ چکی ہیں تو وہ آپ ضرور فالو کیجیے.
بالکل, باندی میں میں نے دیکھا ہے ڈرامہ
جی,
جس میں ایک گونگا کیریکٹر بھی ہے نا,
سوری,
جس میں ایک گونگا کیریکٹر بھی ہے اس کا.
ہاں
ہاں ہاں وہ باندی ہے بالکل. تو بالکل جناب, بہت سے شاید لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ باندی میں ہمارے یاسر جو ہم ٹی وی پہ ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں وہ اس میں نیگیٹو رول کر رہے ہیں, بہت سے لوگ شاید نام کی وجہ سے ریکال نہ کر رہے ہوں, وہ ڈرامہ بھی آسما جی کا لکھا ہوا ہے.
جی بالکل, یاسر حسین ہے اس میں جو یہ رول کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں.
اچھا آسما جی آپ یہاں پہ موجود ہیں, میری اور میری وائف کی آپس میں اس کیریکٹر جو گونگا کیریکٹر ہے اس حوالے سے بات چیت چل رہی تھی, ہم اسے ریکگنائز نہیں کر پا رہے لیکن ان کی شکل بڑی شناسا سی لگتی ہے, کیا وہ کوئی پرانے ایکٹر ہیں؟ کیونکہ میں بہت ان کے حوالے سے سرچ کی لیکن ان کے حوالے سے مجھے کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی, میرے خیال میں کہ اگر وہ ڈراما
جی وہ پرانے ہیں اور وہ بیسیکلی تھیٹر وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو ہی از بیسیکلی ا پراپر ایکٹر, میں آپ کو ان کی ڈیٹیل ساری بھیجوا دوں.
بالکل, کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا لیکن وہ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کون سے ایکٹر ہیں, کیونکہ ان کا بہت زبردست قسم کا کیریکٹر بھی ہے. اچھا اسی باندی کے حوالے سے ہی بتائیے گا کہ باندی میں بھی آپ نے ایک خاتون پیر ٹائپ خاتون ہیں جو اس ڈرامے میں ہیں, ان کی بہت زیادہ ہے, اس کے پیچھے کیا آپ کی آئٹمالوجی, کیا کہانی کے پیچھے کیا ایسا تھا کہ آپ کو ماشاء اللہ اتنا زبردست, کیونکہ وہ مجھے ڈرامہ بہت اٹریکٹ کر رہا ہے اس وقت.
دیکھیں دو تین امپورٹنٹ باتوں کو اس میں اٹھایا ہے, ایک تو اگین وہی جو ہمارے ہاں غریب کچھ بچیوں کے ساتھ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے گاؤں میں گھوٹوں میں, اور وہ پھر شہروں میں آ کے کام کر رہی ہیں, تو ایک تو اینگل یہ ہم نے میں نے پک کیا ہے. دوسرا جو کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہی اگین اچھائی اور برائی کا ایک مکس ہے, کہ برائی جب بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, کس طرح آپ کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ میں ایک بڑا سبلیمنل وے میں میں میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ جو ایک ریلیجن کا مذہب مطلب ریلیجن کا ایک جو چادر ان خاتون نے اوڑی ہوئی ہے, سو وہ اس کے اندر یہ ساری چیز کر رہی ہیں. تو بہت سارے لوگ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کیسا ہے, ہمارا ریلیجن بہت خوبصورت ہے, کچھ لوگوں نے اسے کور بنا کے اس کا فیس خراب کرنے کی شاید کوشش کی بھی ہے, تو وہ والی چیز بھی میں ہائی لائٹ اس کیریکٹر کے تھرو کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا بظاہر ریلیجن بہت خوبصورت ہے جو ان کے پیغامات میں ان کے میسجز میں ان کی باتوں میں آ رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے لیے اسے کور بنایا ہوا ہے غلط طرح سے. تو آہستہ آہستہ یہ کیریکٹر انفولڈ ہوگا اور اس کی بہت مسٹیریس کچھ چیزیں انفولڈ ہوں گی اور مزید کہانی کھلے گی تو آپ لوگوں کو مزید مزہ آئے گا.
اور یقیناً جب ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا کہ باندی ڈرامہ بھی آپ کی طرف سے لکھا گیا, میرے پاس بہت سے میسج آ رہے ہیں, افتخار بھائی نے کہا کہ بہت زبردست ڈرامہ ہے, وہ بھی پسند کر رہے ہیں, عبداللہ بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت پسند کر رہے ہیں, اس کے علاوہ فاطمہ جی ہیں, حیدر ہیں, ذوالفقار بھائی ہیں, امجد ہیں, سبھی کہہ رہے ہیں بہت زبردست ڈرامہ ہے, اور بہت زبردست آپ کی گرپ لگ رہی ہے اس پورے ڈرامے میں کہ بہت زبردست انداز سے اسے لکھا گیا ہے.
تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سب لوگوں کا. اور اگلا میرا جو اب آئے گا, ابھی وہ شوٹ ہو رہا ہے لیکن آئی تھنک تین مہینے کے اندر وہ آن ایئر ہو جائے گا, اس کا نام ہے سرخ چاندنی.
صحیح, और वो भी हम टीवी पे आ रहा है,
वो ARY पे आएगा। सही, जब भी शुरू होगा तो आप लोग जरूर इतने ही प्यार से उसे भी देखिएगा।
सही। समन जी का सवाल है, हमारे पास वक्त ही अब थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एड्स भी लेने हैं। समन जी का सवाल है, वो कहती हैं कि हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, किस किस चीज पे हैं ताकि वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें?
मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मौजूद हूँ, इंटरेक्शन का लेवल देखना होगा कि क्या है, लेकिन बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूँ। लोग मुझे कमेंट्स भी भेजते हैं, अपना प्यार भी भेजते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ असमा नबील के नाम से, और आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। फेसबुक पे मैं हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपने जो हमसे वादा किया है, आपने जो शायरी हमें भिजवानी है वो डेफिनेटली मुझे भेजिएगा, ताकि मैं अपने सुनने वालों के लोगों की बहुत सी फरमाइश है ताकि मैं इनको सुना सकूं।
बिल्कुल, मैं अपनी शायरी के पीसेस में से इंशाल्लाह एक एक्सक्लूसिव पीस जो मैंने कहीं शेयर नहीं किया है, वो मैं अपने प्यार करने वालों को, मेरे सुनने वालों को, चाहने वालों को भेजूंगी।
बहुत शुक्रिया आसमा जी। जाने से पहले हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, इनको आपका क्या मैसेज होगा, ड्रामा के हवाले से, फिल्म के हवाले से और मुआशरती हवाले से?
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस 20 मिनट में इतना सारा प्यार और इज्जत देने का। आप लोगों का प्यार और इज्जत है जिसकी वजह से हम सारे जो भी इस फील्ड के लोग हैं वो फलते फूलते हैं बेसिकली। एंड जहां तक फिल्म और ड्रामा की बात है, बस कीप सपोर्टिंग पाकिस्तानी फिल्म्स, स्पेशली जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, और पाकिस्तानी ड्रामे तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं। और मुआशरे के हिसाब से भी यही है कि चाहे हम आप लोग ओवरसीज हैं या आप यहाँ पे भी हैं, बस अपने हमें मुल्क की इज्जत और नाम बना के रखना है अच्छे तरीकों से, और बस उसमें अगर हम सब एक साथ जुड़े रहें तो मेरा ख्याल से दैट इज द बेस्ट थिंग।
सही। जाने से पहले एक और सवाल आ गया है, वो एक हमारी एक और ड्रामा राइटर हैं, वो पिछले साल आई थी यहाँ पे, उन्होंने एक पूरा यूके का टूर किया था जिसमें उन्होंने बहुत सी खवातीन से मुलाकात की थी, उसी किस्म का सवाल किया गया है मुझसे शाइस्ता जी का। वो कह रही हैं कि आप इस किस्म का टूर प्लीज जरूर रखें क्योंकि हम आपसे मिलना चाहती हैं, तो प्लीज अगर आपका कोई टूर की कोई भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हुई तो हमें जरूर बताइए ताकि हम इन लोगों के साथ जरूर शेयर कर सकें।
बिल्कुल, मैं नेक्स्ट जो भी होता है और जो भी इस तरह का टूर होगा मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू।
बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
थैंक यू सो मच तन्वी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और हमारे साथ मौजूद थी असमा नबील जी, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। खानी ड्रामा बहुत जबरदस्त उनका ड्रामा रहा, मान जाओ ना, इसके अलावा खुदा मेरा भी है, और इसके अलावा अभी फिलहाल जो ड्रामा चल रहा है उनका, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बांधी। चलिए जनाब, वक्त हुआ जाता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आते हैं तो आपसे गपशप रहेगी।